बेनियामीन वंश अध्याय 19 एफ्रेम का लेवी प्रवासी और उसकी उपपत्नी। उस समय इज़राइल में कोई राजा नहीं था। एक लेवी वंशी एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश के अंतिम छोर पर प्रवासी के रूप में रहता था। वो यूदा के बेथलहम से एक उपपत्नी लाया था। वो अपने पति के प्रति ईमानदार नहीं रही और उसे छोड़कर यूदा के बेथलहम में अपने पिता के घर चली गई। वो वहां लगभग 4 महीने रही, फिर उसका पति उसे समझा बुझाकर लौटाने के लिए वहां गया। उसके साथ एक नौकर और 2 गधे थे। पत्नी उसे अपने पिता के घर के अंदर ले गई। उस लड़की के पिता ने उसे देखकर उसका स्वागत किया। उसके ससुर उस लड़की के पिता ने उसे रोक लिया और वो 3 दिन तक उसके यहां रुक गया। वे खाते पीते वहां रुके रहे। वे 4th दिन बड़े सवेरे उठे और लेवी वंशी चलने की तैयारी करने लगा, परंतु लड़की के पिता ने अपने दामाद से कहा, चले जाने से पहले जलपान करो। वे दोनों बैठकर साथ साथ भोजन करने लगे। लड़की के पिता ने उस व्यक्ति से कहा, कृपा कर एक और रात यहां रुक जाओ और मनोरंजन करो। जब वो व्यक्ति चलने की तैयारी करने लगा तो उसके ससुर ने उसे रात को वहीं रुकने के लिए विवश कर दिया। जब वो 5वें दिन बड़े तड़के चलने को तैयार हुआ, तब उस लड़की के पिता ने कहा, कुछ खा पी कर दिन ढलने तक यहीं आराम करो। फिर वे दोनों भोजन करने लगे। जब वो व्यक्ति अपनी उपपत्नी और अपने नौकर के साथ चलने लगा, तब उसके ससुर उस लड़की के पिता ने उससे कहा, देखो अब सांझ होने लगी है, रात भर यहीं ठहर जाओ, दिन ढल चुका है, रात भर यहीं ठहर कर मनोरंजन करो, कल सवेरे तड़के ही उठकर प्रस्थान करो और अपने घर चले जाओ। गिबा में प्रवासी और उसकी उपपत्नी। परंतु उस व्यक्ति ने रात को फिर ठहरना नहीं चाहा, वो चल दिया और यबूस अर्थात यरूशलेम के पास तक आया। 2 कसे हुए गधे और उसकी उपपत्नी उसके साथ थी। यबूस के पास पहुंचते पहुंचते दिन काफी ढल चुका था, इसलिए नौकर ने अपने मालिक से कहा, चलिए यबूसियों के इस नगर में ठहर कर रात यहीं काट लें। उसके मालिक ने उसे उत्तर दिया, हम उन परदेशियों के नगर में जो इज़राइली नहीं हैं न ठहरे, आगे गिबा तक बढ़ चले। उसने अपने सेवक से यह भी कहा, चलो हम गिबा या रामा तक पहुंचकर वहां रात बिताएं। वे आगे बढ़ते गए। बेनियामीन के गिबा के निकट पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त होने लगा, इसलिए वे मार्ग छोड़कर गिबा में रात बिताने के लिए उधर मुड़ पड़े। वहां पहुंचकर वे नगर के चौक में ठहरे, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जो उन्हें रात भर के लिए अपने घर में आश्रय दे। संयोग से शाम को एक बूढ़ा खेत में काम कर लौट रहा था। वह एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश का था और प्रवासी के रूप में गिबा में रहता था। उस नगर के निवासी बेनियामीन वंशी थे। उसने उधर दृष्टि दौड़ाकर देखा कि नगर के चौक में यात्री पड़े हैं। उस बूढ़े ने पूछा, आपको कहां जाना है और आप कहां से आ रहे हैं? उसने उससे कहा, हम यूदा के बेथलहम से एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश के अंतिम छोर पर जा रहे हैं। मैं वहीं का निवासी हूं। मैं यूदा के बेथलहम गया था और अब फिर अपने घर लौट रहा हूं, लेकिन यहां कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो मुझे अपने घर में आश्रय दे। अपने गधों के लिए भूसा और चारा तो हमारे पास है, मेरे लिए तथा आपकी इस दासी और आपके दासों के इस नौकर के लिए रोटी और दाखरस भी है, किसी चीज की कमी नहीं है। उस बूढ़े ने कहा, आपका स्वागत है, आपको जिस चीज की जरूरत है मैं उसे आपको दूंगा। आप किसी भी हालत में चौक पर रात न बिताइए। उसने उसे अपने घर ले जाकर गधों को खिलाया, उन्होंने अपने पांव धोए और खाया पिया। गिबा निवासियों का दुराचार। वे खा पी ही रहे थे कि नगर के कुछ आदमी, कुछ नीच व्यक्ति उस घर को घेर कर द्वार खटखटाने लगे और घर के मालिक उस बूढ़े से कहने लगे, उस पुरुष को जो तुम्हारे यहां आया है बाहर निकालो, जिससे हम उसका भोग करें। इस पर वो आदमी, घर का वो मालिक, उनके पास बाहर जाकर उनसे कहने लगा, भाइयों, मैं तुम लोगों से प्रार्थना करता हूं कि तुम ऐसा कुकर्म न करो। वह आदमी मेरे यहां आया हुआ अतिथि है, तुम ऐसा कुकर्म मत करो। देखो, मैं अपनी कुंवारी कन्या और उसकी उपपत्नी को बाहर तुम्हारे पास ला देता हूं, तुम उनके साथ जैसा चाहो कर लो, लेकिन इस पुरुष के साथ ऐसा कुकर्म मत करो। जब उन आदमियों ने उसकी एक भी न सुनी, तब वो लेवी वंशी ही अपनी उपपत्नी को उनके पास बाहर ले आया। उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया और रात भर सवेरे तक उसके साथ दुर्व्यवहार किया। पौ फटने पर ही उन्होंने उसे जाने दिया। जब वो स्त्री सवेरे वापस आई, तब वो उस पुरुष के घर के द्वार पर गिर पड़ी, जहां उसका स्वामी था, और उजाला होने तक वहीं पड़ी रही। गिबा निवासियों में बदला लेने पर विचार। जब उसके स्वामी ने प्रातःकाल घर का किवाड़ खोला और अपना रास्ता पकड़ने के लिए बाहर निकलने लगा, तब उसने अपनी उपपत्नी को देखा, जो अपने हाथों को घर की देहली पर रखे पड़ी थी। उसने उससे कहा, उठो, हम चलें। परंतु उसे कोई उत्तर न मिला। उसे अपने गधे पर लाद कर वो व्यक्ति चल दिया और अपने घर का रास्ता पकड़ा। घर पर पहुंचते ही उसने चाकू से अपनी उपपत्नी के अंग काट कर 12 टुकड़े किए और उन्हें इसराइलियों के सारे प्रांतों में भेज दिया। जिन जिन लोगों ने ये देखा, वे बोले, जब से इसराइली मिस्र से निकल कर आए हैं, तब से आज तक ऐसी कोई घटना कभी नहीं घटी। अब विचारो, परामर्श करो और बता दो कि हम क्या करें।